16 पुस्तक 16वी लेक्चर नंबर 16 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मुनिय परमर्थ विद्धर मुनिवर वीरैः सिद्ध विजयै जासन्तु आभयवदी पश्यौ सुयदेवया मच्छं सुसुदेवयाय भक्ति सुदोवजोगो वभावियो सम्मं आवहैनान सिद्धिं नानफलं चाविनिर्वाणं तो सुवदेवय मिनमो तिक्कुत्तोपणमियून भक्तिये जहासुत्तम आचार्य श्री भीष्म स्वामी रचित यह जय जवला ग्रंथ है जो कषाय पावर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर यह टीका लिखी हुई है जिसके कर्ता है गुणधर भट्टार तथा यतीशु आचार्य जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 16वीं पुस्तक उसमें चारित्र मोक्ष अपना नाम का अर्थाधिकार तो अपना पूर्ण हुआ है। पश्चिम स्कंध नाम का अर्थाधिकार यहाँ चल रहा है और हम आए हैं पृष्ठ संख्या 182 पर 182। यहाँ तो हमने देखी थे सहयोगी गुणस्थान में सहयोग केवल गुणस्थान में जिनके कर्मों की स्थिति समान करने के लिए केवली समुदात होता है उसके एक अंतर्मुहूर्त पहले आवर्जित करण होता है फिर केवली समुद्घात होता है उसमें क्या क्या बातें होती है उसकी हमने विस्तार से चर्चा की है। उसके बाद ये जो योग का निरोध होता है योग का निरोध यानी पहले बादर का योग होता है बादर मनोयोग वचन योग और उच्छ्वास और बादर का योग इनको सूक्ष्म किया जाता है और फिर सूक्ष्म किए हुए को फिर उसकी अपूर्व स्पर्धक और पुष्टि बनाकर वो क्रम से उसका योग और हीन होते होते नष्ट हो जाता है। तो यहाँ हम आए हैं 182 पेज पर वो तो योगों की बात तो हो ही गई है। उसके बाद कहते कि नाम गोत्र और वेदनीय के अंतिम स्थिति कांडक को ग्रहण किया। अंतिम स्थिति कांडक को ग्रहण करके कितना बड़ा कांडक लिया तो नीचे रिमेनिंग जो सहयोग केवली का काल और आयोग केवली का पूरा काल इतना बाकी छोड़कर ऊपर के सभी निषेक कांडक रूप से ग्रहण किए। और यहाँ गुणश्रेणी यहाँ की जो गुणश्रेणी नई नीचे गुणश्रेणी बनी और उसमें किस विधि से द्रव्य दिया जाता है वो बात बताई। यहाँ की जो गुणश्रेणी वो गलित शेष होगी क्योंकि अभी एक एक निषेक गल जाएगा और जीव अंतिम समय को प्राप्त होकर मोक्ष चला जाएगा। अब यहाँ आते हैं 182 पर पुनः अंतिम स्थिति कांडक की अंतिम फाली के द्रव्य को ग्रहण करके। अब ये अंतिम स्थिति कांडक है इसके बाद वो कांडक घात वगैरह नहीं हो गए। उदय में स्तोक प्रदेश पुंज देता है ये अंतिम का वो द्रव्य किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है उदय में सबसे अल्प तदनंतर समय में असंख्यात गुणे प्रदेश पुंज को देता है। इस प्रकार असंख्यात गुणे श्रेणी रूप से निक्षेप करता हुआ अयोगी केवली के अंतिम समय तक जाता है। अयोग केवली के अंतिम समय तक जाता है करते क्या है जो निषेक थे जो अंतिम समय में खिलने वाला है वहां तक असंख्यात गुणा रूप से दिया। अभी वो अंतिम समय प्राप्त नहीं हुआ है। गुण श्रेणी की लंबाई कितनी थी अयोगी के चरम समय तक जाए इतनी वहां तक असंख्यात गुणा दिया। अब इसी समय में योग निरोध क्रिया और सहयोगी केवली के काल की समाप्ति होती है। जब अंतिम वो फाली नीचे आना उस रूप से दिया जाना और ये तो सहयोग केवली गुणस्थान का अंतिम समय। इससे आगे गुणश्रेणी और स्थितिघात तथा अनुभाग घात नहीं है, क्योंकि ऊपर से अपकर्षण वगैरह यानी जिसको कहते हैं कांडक घात वगैरह कुछ नहीं है। एक 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 स्थिति गलेगी, केवल अधस्थिति के द्वारा असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से कर्म निर्जरा का पालन करता है। ये असंख्यात गुणी श्रेणी कर्म निर्जरा क्यों हो रही है? क्योंकि गुण श्रेणी ऑलरेडी बनी है, तो प्रत्येक निषेय में असंख्यात गुणा परमाणु पड़े हैं, तो वो उदय में आकर उसकी निर्जरा होगी। यहीं पर साता करना, साता वेगनी के प्रकृति बंध की विच्छित्ति होती है। ये सहयोगी का अंतिम समय तथा 39 प्रकृतियों की उदीर्ण विच्छित्ति जाननी चाहिए। वेदनी की उदीर्ण विच्छित्ति कहाँ हुई थी? छठे में। आयु की भी वहीं पर हुई। अब यहाँ जो उदय रूप प्रकृतियां हैं, उदीर्णा उसी की होती है जो उदय रूप होती है। तो यहाँ सभी, अभी इसके आगे उदीर्णा किसी भी प्रकृति की नहीं होगी। तो हमने उदय की विच्छित्ति कितनी देखी थी यहाँ पर? सभी 30 की देखी थी। और बाद में उदय रूप न वो रहने वाली है, तो ये 39 हो गई। टोटल की बात चल रही। तो यहाँ उदय की विच्छित्ति होने वाली 30 और अयोगी के उदय में आने वाली 9, ऐसे 39। ख्याल में 39
सब मिला के कह रहे हैं,
सब मिला के, क्योंकि उदीर्णा की विच्छित्ति यहीं पर होने वाली है। उसमें से 30 के उदय की भी विच्छित्ति हुई और 9 का उदय रहेगा। उदय रहेगा पर उदीर्णा नहीं होगी उसकी। उसी समय आयु के समान नाम गोत्र और वेदनीय कर्म स्थिति सत्कम रूप से हो जाते हैं। सबकी स्थिति समान हो जाती है इसी समय में। इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। जोगम्मी निरुद्धम्मी आउस असमानी कम्माणी होंती आउ समानी कम्माणी होंती। योग का निरोध होने पर स्थिति की अपेक्षा आयु के समान कर्म होते हैं। अन्य कर्म जो है आयु के समान हो जाते हैं। केवली समुद्घात क्रिया द्वारा योग निरोध रूप काल के भीतर स्थितिघात और अनुभाग घात के द्वारा घात करने से शेष रहे नाम गोत्र और वेदनी कर्म इस समय आयु के समान होकर, केवली समुद्घात में तो समान नहीं हुए थे, वहां तो बड़े बड़े कांडक घात हुए थे, और बाद में भी अंतर्मूर्त के कांडक घात हजारों हुए थे, तब जाके अभी लास्ट मोमेंट पर वो सबका समान हो गया है। समुद्घात के बाद भी हजारों स्थिति कांडक घात हुए हैं, परंतु वहां बहुत बड़े बड़े कांडक हुए थे, इसलिए वो समुद्घात क्रिया हुई थी। ना प्रस्तावक निष्ठा नहीं
के, तो वहाँ पर उसने आयु कर्म के बराबर करने के लिए काम शुरू किया,
वो तो बात अलग,
और यहाँ पर खत्म हुआ
उसका स्थिति कर्म हो जाता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार इतने प्ररूपणा प्रबंध द्वारा सहयोगी केवली गुणस्थान का पालन करके उस काल के समाप्त होने पर यथावसर प्राप्त अयोग केवली गुणस्थान को प्राप्त होता है। इस बात का प्रतिपादन करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। तदो अंतोमूर्तम शैलेशिम ये परिवज्जति। तदनंतर अयोग केवली जिन अंतर्मूर्त काल तक शैलेश पद को प्राप्त करते हैं, उसके बाद अंतर्मूर्त काल तक अयोगी केवली भगवान होकर अलेश भाव से शैलेश पद को प्राप्त होते हैं। यह सूत्र का अर्थ है, यानी वो लेशारहित होते इसलिए अलेश कहे, और संपूर्ण शील से युक्त होते इसलिए शैलेश को। शैलेश नहीं कहा, शैलेश कहा, शील के ईश हो गए ना भी। यह शैलेश पद क्या है? शीलों के ईश को शीलेश कहते हैं, और उसका भाव शैलेश्य है। समस्त गुण और शीलों के एकाधिपति पने की प्राप्ति, यह इसका भाव है। शंका, यदि ऐसा है तो इस विशेषण का आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान अनंत परमेष्ठी के सहयोग के लिए अवस्था में ही सकल गुणों और शीलों के अधिपति पने को अविकल रूप से प्राप्त करके आत्मलाभ किया है। अन्यथा उनके अधूरे गुण और शील पने के होने पर वो शी बराबर करना, यानी वो शीलपना अगर अधूरा हो जाए, उनमें हम लोगों के समान परमेष्ठीपना नहीं बन सकता। समाधान, यह कहना सत्य है, क्योंकि आत्मस्वरूप समस्त गुणों के समूह को प्राप्त करने वाले और निष्कलंक ऐसे सहयोगी भगवान के सहयोगी केवल ही भगवान है। अतः परम उपेक्षा लक्षण यानी परम वितरकता लक्षण यथाख्यात विहार शुद्धि संयम की पराकाष्ठा पर आरूढ़ हुए यानी उत्कृष्टता प्राप्त हुए तथा समस्त गुणों और शीलों को वहन करने वाले उनके पूरी तरह से स्वरूप के ईक्षण यानी अवलोकन का आविर्भाव हुआ है ऐसा स्वीकार किया जाता है। किंतु उनमें योग के निमित्त से होने वाले आश्रव मात्र के सत्व की अपेक्षा पूरा संवर और समस्त कर्मों की निर्जरा रूप फल उत्पन्न नहीं होता। एक ही बराबर करना, परंतु अयोगी केवली भगवान में पूरी तरह से आश्रव द्वार के रूप जाने पर प्रतिपक्ष के बिना स्वरूप से आत्मलाभ की प्राप्ति स्फुरायमान हो जाती है। इस प्रकार इस अभिप्राय से उनमें अयोग केवली भगवान में शीलेशपना स्वीकार किया गया है, इसलिए कोई दोष का अवसर नहीं है। यहाँ अयोगी केवली गुणस्थान के स्वरूप का निरूपण करते हुए गाथा सूत्र कहते हैं। सेले सिम संपत्तो निरुद्ध निशेषासवो जीवो कम्मरय विपमुक्को गय जोगो केवली होई। जो शीलेशपने को प्राप्त है, जिन्होंने समस्त आश्रव का निरोध किया है, आश्रव करना श्रवणी आश्रव का निरोध किया है कर लिया है, ऐसा जीव कर्मरज से कर्मरजनी कर्म रूपी धूलि मुक्त होकर अयोगी केवली होता है। कर्मरजनी वो तो पुरानी बंदी हुई पड़ी है, अभी तभी नया नहीं कुछ आ रहा। इस प्रकार अंतर्मूर्त काल तक अलेश भाव से यानी लेशा रहित हुए हैं। आप कहेंगे पहले भी कषाय नहीं था परंतु योग था, इसलिए उपचार से वहां पर लेशा भी कही थी उनके। अलेश भाव से शीलेश पने को प्राप्त करते हुए पालन करते हुए भगवान अयोगी केवली में कैसा ध्यान परिणाम होता है, इसलिए आगे कहते हैं। समुच्छिन्न किरियम अनियट्टी सुक्कज्झानम झायदि। अयोगी केवली भगवान समुच्छिन्न क्रिया योग रूप यानी समुच्छिन्न योग रूप अनिवृत्ति अनिवृत्ति ने अप्रतिपाती, जैसे पहले बताया ना उसमें सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती लिया, यहाँ समुच्छिन्न क्रिया में अप्रतिपाती हो गए। शुक्ल ध्यान को ध्याते हैं, क्रिया नाम योग का है। जिस ध्यान में क्रिया यानी योग समुच्छिन्न हो गई है, समुच्छिन्न पूरी तरह से अच्छी तरह से नष्ट हो गई है, वह समुच्छिन्न क्रियारूप ध्यान है। समुच्छिन्न क्रियारूप ध्यान तथा जो प्राप्त होने पर निवर्तन होने रूप स्वभाव वाला नहीं है, वह अनिवर्ती ध्यान है। हाँ, जो समुच्छिन्न क्रियारूप होकर अनिवर्ती ध्यान है, वह समुच्छिन्न क्रिया निवर्ती ध्यान कहलाता है। अनिवर्ती नहीं अप्रतिपाती, समस्त वचन योग मनोयोग और काय योग के व्यापार के नाम शेष हो जाने से परिपूर्ण रीति से नष्ट हो जाने से तथा अप्रतिपाती होने से, यानी अभी फिर दोबारा उत्पन्न नहीं होगा, नष्ट हुआ तो अभी फिर उसमें से वो अवस्था नाश नहीं होगी। समुच्छिन्न क्रियापने के साथ तथा लेशा के अभाव रूप बलाधान से युक्त इस अंतिम शुक्ल ध्यान को कायत्रय निमित्तक बंध निर्मोचन। कौन से तीन काय है? कायत्रय निमित्तक बंध, औदारिक तेजस कारमान के भी कहते ना तीन काय, औदारिक तेजस कारमान के तीन काय निमित्तक बंध निर्मोचन रूप, निर्मोचन ने भी तो चुर गया वो, एक फल का अनुसंधान करके वे भगवान ध्याते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। पहले के समान यहाँ पर भी ध्यान का उपचार प्रवृत्त करना चाहिए। कायत्रय में वो मनोवचन का भी ले सकते हैं और यह अभी बंध निर्मोचन लिए ना, इन्हें ये यहाँ भी ध्यान का उपचार है, क्योंकि परमार्थ वृत्ति से एकाग्र चिंता निरोध लक्षण ध्यान परिणाम ध्रुवोपयोग से परिणत केवल ही भगवान में नहीं बन सकता। बंध विमोचन रूप एक फल का अनुसंधान करके कायत्रय ने तीन प्रकार के काय हो न, औदारिक तेजस, क्योंकि केवल कर्म का ही बंधन नहीं रुकता है, तीन कायों का भी हो गया ना, औदारिक तेजस नहीं ना, औदारिक तेजस कारमान ऐसे ले सकते ना, क्योंकि उनके भी उदय की वहां विच्छित्ति हो जाती है, कारमान शरीर औदारिक शरीर नाम कर्म करे। अब इसलिए समस्त आश्रव द्वार जिनका निरुद्ध हो गया है, यानी योग वाला आश्रव था वो भी अभी नष्ट हो गया है, ऐसे केवली भगवान के अशेष कर्मों की निर्जरा रूप, यानी जो कुछ बाकी रखे बिना जितने बाकी कर्म है वो सबकी निर्जरा रूप एक फल वाला अपनी आत्मा में अवस्थान ही यहाँ ध्यान है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। कहा भी है चतुर्थम स्याद योगस्य शेष कर्म चिदुत्तमम् फलमस्याद्भुतम् धाम परतीर्थ दुरासदम्। ये चौथा नंबर का ध्यान है ना, अयोगी केवली जिनके शेष कर्मों का छेद करने वाला विपरत क्रिया निवर्ती, वहां समुच्छिन्न क्रिया कहो या विपरत क्रिया कहो, नाम का यानी विपरत क्रिया अनिवर्ती किया, चौथा उत्तम शुक्ल ध्यान होता है जो मिथ्या तीर्थ वालों को दुरासद है। अद्भुत मोक्ष धाम की प्राप्ति इसका फल है, ये ध्यान के फल क्या है तो मोक्ष की प्राप्ति। मिथ्या तीर्थ वाले नहीं, ये अन्य मति जो है, अन्य उपदेश देने वाले जो है, अन्य दर्शनों की बात है, वो तो उनको हो ही नहीं सकता, दुरासद प्राप्त ही नहीं हो सकता। वह योगी केवली जिन उस प्रकार के ध्यान परिणाम के अतिशय से समस्त मल और कलंक बंधन का नाश कर किट्ट रूप धातु और पाषाण के निकल जाने पर शुद्ध सोने के समान, यानी जो स्वर्ण पाषाण होता है उसको जब वो अग्नि में तप्तायमान करके शुद्ध किया जाता है तो उसमें से वो धातु, अन्य जो मिट्टी है, पाषाण है, अन्य धातु है, वो निकल जाते हैं और सोना शुद्ध हो जाता है, उसके समान आत्मस्वरूप को प्राप्त कर उस प्रकार की गति परिणाम रूप स्वभाव के कारण जिस प्रकार प्रदीप की शिखा अन्य पर्याय रूप परिणाम जाती है, उसी प्रकार यह केवली जिन यही सिद्ध होता है, होता हुआ यानी सिद्ध अवस्था यहीं पर प्राप्त होती है, सिद्ध स्वरूप वह एक समय द्वारा लोक के अंत तक ऊपर जाता है। इस बात का प्रतिपादन करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं, कोई करेक्शन है? 185 पद के काल के कहाँ पर?
शैलेश काल के,
हाँ शैलेश काल के शैलेशी अध्याय, हाँ और कोई है करेक्शन? तभी करेंगे। शैलेशी अध्याय झीणाए सर्वकम्म विपमुक्को एक समयेण सिद्धिम गच्छई। शैलेश काल के क्षीण हो जाने पर समस्त द्रव्य भाव कर्मों से मुक्त होता हुआ, यानी द्रव्य कर्मों से और भाव कर्मों से मुक्त होता हुआ यह जीव एक समय द्वारा सिद्धि को प्राप्त होता है। अयोगी केवली गुणस्थान का काल शैलेश पद का काल है, यानी शैलेश पद के काल का क्षय होंगे, परंतु वह अयुरु इन 5 ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है उतना होता है, ऐसा आगम के जानकारों का निश्चय है। इस अवस्था में यथाक्रम अधस्थिति के गलने से शेष कर्मों के क्षीण होने पर समस्त मल और कलंक से मुक्त होता हुआ सकल पुरुषार्थ की सिद्धि होने से परम काष्ठा को प्राप्त अपने आत्मा की उपलब्धि लक्षण, यानी आत्मा की प्राप्ति उपलब्धि लक्षण सिद्धि को एक समय के द्वारा ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात सिद्ध पद को प्राप्त एक समय में लोकाग्र को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि समस्त कर्मों के क्षय होने के अनंतर ही मोक्ष पर्याय की उत्पत्ति बनती है। कहा भी है कर्म बंधन बद्धस्य सद्भुस्यांतरात्मना कृष्ण कर्म विनिर्मोक्षो मोक्ष इत्यभिधीयते। एक एक का अर्थ देखते हैं। नीचे कर्म बंधन से बद्ध विद्यमान अंतरात्मा के समस्त कर्मों से मुक्त हो जाने का नाम मोक्ष है, ऐसा कहा जाता है। कृष्ण कर्म ने समस्त कर्म, यथा बीजास्तित्वे यवतिलमसुर प्रभृतय प्ररोहन्ति क्षिप्त्वा भुवि बहुविध प्रत्ययवशात् तनोर्बीजं कर्म क्षयम् उपगते कर्मणि तथा प्रसूर्तिर्देहानाम् असति भव बीजे न भवति। जैसे बीज के अस्तित्व में, बीज अस्तित्वे यवतिल मसूर प्रभृतया, कौन कौन? जो यानी यव तिल और मसूर आदि पृथ्वी में निक्षिप्त कर अनेक कारणों के वश से अंकुरों को उत्पन्न करते हैं, उसमें से वो बोने पर, बीज बोने पर अंकुर हो जाता है। उसी प्रकार कारण यानी वो तो अंतरंग में तो उसकी उपादान कारण है ही है, बाह्य भी निमित्त को यहां बताया। उसी प्रकार संसार में शरीर का मूल कारण कर्म है, उस कर्म के क्षय को प्राप्त होने पर शरीरधारियों के भव बीज के नहीं रहने पर नव बीज की उत्पत्ति नहीं होती। भव बीज की, हाँ भव बीजे न भवती, भव बीज की उत्पत्ति नहीं होती वो भव करना। शरीरधारियों के देहानाम असति भव बीजे न भवति, नहीं शरीरधारियों के देहानाम असति तनोर्बीजं कर्म क्षयम् उपगते कर्मणि तथा कर्म के क्षय को प्राप्त होने पर
ये जो भाव बीज वाला शरीर बीज के नहीं लेने पर भाव बीज की उत्पत्ति नहीं होती है, जो रहने वाले का तनो बीज मतलब शरीर बीज,
शरीर का बीज कर्म है, शरीर का बीज कर्म है, ये तो ले लिया उन्होंने। संसार में शरीर का मूल कारण कर्म है, वो तन और बीज हो गया। उस कर्म के क्षय को प्राप्त होने पर,
कर्म बीज के नहीं रहने पर,
कर्मणि तथा प्रसूतिर देहानाम असति,
शरीरधारियों के कर्म बीज के नहीं रहने पर भव बीज की उत्पत्ति नहीं होती।
देह की उत्पत्ति नहीं होती है, इसे चाहिए।
नव बीज जो हमने किया वही गलत है।
नहीं, नव बीज की नहीं,
शरीर भव बीज नहीं रहने पर, भव बीज नहीं रहता नए बीज की उत्पत्ति नहीं होगी।
भव बीज के शरीरधारियों के भव बीज के नहीं रहने पर देह की, नवीन देह की, नवीन देह की उत्पत्ति नहीं होती। हाँ, नव बीज यानी वो फिर दोबारा वो उत्पत्ति नहीं होती, नया शरीर नहीं। यहाँ पर अयोगी केवली द्विचरण समय में अनुदय रूप वेदनीय और देवगति आदि 72 प्रकृतियों की क्षपना करता है, क्योंकि संयोग केवली अवस्था में क्षपना तो नहीं हुई थी, केवल कितने प्रकृतियों के उदय की विच्छित्ति हुई थी, परंतु इतनी 72 यानी 85 प्रकृतियों में से 72 प्रकृतियों का क्षय तो यहाँ पर होता है द्विचरण समय में। और अंतिम समय में उदय सहित वेदनीय, मनुष्यायु और मनुष्य गति आदि 13 प्रकृतियों की क्षपना करता है, ऐसा जानना चाहिए। उसमें से तो 12 उदय रूप है, मनुष्य गत्यानुपूरी उदय रूप नहीं है, फिर भी सबका एक साथ क्षय हो जाता है। तथा उन प्रकृतियों का नाम निर्देश सुबोध है, इसलिए शास्त्र में ठीक ही कहा गया है कि समस्त कर्मों का क्षय होने से शरीर रहित अनंत ज्ञानादि की परम काष्ठारूप आत्मस्वरूप की प्राप्ति मोक्ष है। पराकाष्ठा कहो या परम काष्ठा कहो, एक ही बात है। इस प्रकार इस कथन से प्रदीप के निर्वाण के समान स्कंद संतान का उच्छेद हो जाने से आत्मा के अभाव मात्र का नाम निर्वाण है, ऐसी कल्पना करने वाला वादी निराकृत हो गया। कोई ऐसे मानते हैं ना, जैसे प्रदीप बुझ जाता है वैसे यहाँ पर भी आत्मा का अभाव हो जाता है, ऐसा मानने वाले का निराकरण हुआ, क्योंकि समस्त पुरुषार्थ की सिद्धि होने से परम काष्ठा लक्षण मोक्ष को अभाव मानने में विरोध आता है, तथा मोक्ष को अभाव मात्र मानने पर प्रेक्षापूर्वक कार्य करने वालों के लिए मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना व्यर्थ हो जाता है। यानी यदि मोक्ष में तो अभाव होगा तो उसके पुरुषार्थ कौन क्यों करे, अपना अभाव कौन चाहेगा। और कोई भी सचेतन पुरुष आत्मा का अभाव करने के लिए प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार मोक्ष का अभाव मानने पर मोक्ष प्रक्रिया का अवतार करना असमंजस नहीं ठहरेगा। उदय नहीं है,
सत्ता में पड़ी है।
हाँ, सत्ता में है ना, गति है, क्योंकि 12 तो उदय रूप प्रकृति है और एक गत्यानुपूर्वी पड़ी है, तो 13 का क्षय अंतिम समय में होता है। अभी अन्य अन्य मति वालों का कैसा निराकरण होता है उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार, इन 9 आत्मा के गुणों का मूल से उद्वर्तन होकर उच्छेद हो जाने पर गुणों से रहित आत्मा का, ये निर्गुण मानने वाले जी, इसको गुण माने सबको, बुद्धि सुख दुख इच्छा वगैरह वगैरह, गुणों से रहित आत्मा का अपनी आत्मा में अवस्थान होने का नाम मोक्ष है, निःश्रेयस उसी को कहते हैं। इस प्रकार दूसरे मन वाले, मत वाले चाहिए, वैशेषिक है, दूसरे मत वाले यानी वैशेषिक कल्पना करते हैं, सो उनकी कल्पना का पूर्वोक्त कथन से ही निराकरण जानना चाहिए, क्योंकि उक्त कथन में भी भ्रष्ट पुरुषार्थ को छोड़कर पुरुषार्थ की सिद्धि की किसी भी प्रकार से उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि विशेष लक्षण से शून्य को वस्तुपना नहीं प्राप्त होता। विशेष लक्षण जो बुद्धि आदि वही निकल जाने से, वो विशेष गुण नहीं रहेंगे तो द्रव्य ही नहीं सिद्ध होगा, वस्तुपना ही नहीं रहेगा। तथा गधे के सिंगों के समान मुक्तात्माओं के अभाव का प्रसंग आता है, इसलिए यह दर्शन समीचीन नहीं है। ये पहले जो मान्यता थी ना, इस प्रकार दूसरा मान रहे थे। अब आगे अन्य अन्य मति क्या मानते उसकी बात है। जिस आत्मा का कार्य करण संबंध का कारण क्या है, कार्य कारण संबंध, ऊपर कारण लिखा है, कार्य कारण संबंध, उपरत कार्य कारण संबंध, यानी जिस आत्मा का कार्य कारण संबंध उपरत यानी नष्ट हो गया है, ऐसे आत्मा का सोए हुए पुरुष के समान चेतना के अव्यक्त स्वरूप से अवस्थित रहना मोक्ष है, ऐसा अन्य मत वाले मानते हैं। अभी चेतना अव्यक्त हो जाती है ऐसा कहते हैं, परंतु उन मत वालों का ऐसा कहना भी असत है, क्योंकि इस मान्यता में भी अपरिहार्य रूप से पूर्वोक्त दोष प्राप्त होते हैं, क्योंकि अपना स्वरूप का ही अव्यक्त हो जाना ये कौन चाहेगा। इसलिए असमीचीन दर्शनों के कथन की पूर्व में जितनी चर्चा की है वह पर्याप्त है, इनके कथन की अब और आवश्यकता नहीं। तो ऐसे अन्य अन्य मतों के हरेक की चर्चा करने की जरूरत नहीं, सब रूल आउट हो गए कहते। अतएव अपने आत्मा की उपलब्धि का नाम ही सिद्धि यानी मोक्ष है, इसलिए उक्त कथन से हमारा सिद्धांत सिद्ध हुआ और दूसरों के द्वारा माने गए सिद्धांतों का व्याघात हो गया। उन्होंने तो कल्पना कर दी है और ये तो ट्रुथ है। इस कारण इस प्रकार अनादि कर्मबंध से परतंत्र हुआ, ये कर्मबंध अनादि से था और ये जीव परतंत्र हुआ, तथा संसार चक्र में परिभ्रमण करता हुआ यह आत्मा मोह के उदय से उपस्थित हुए प्रेम और द्वेष संज्ञा वाले राग और द्वेष, प्रेम को तो सब दुनिया अच्छा अच्छा मानती है ना, किसके मोह के उदय से उपस्थित हुए प्रेम और द्वेष संज्ञा वाले राग और द्वेष रूप पर्याय को बार बार प्राप्त होता हुआ तत्पूर्वक मोहनी और इतर कर्मों की मूल और उत्तर प्रकृतियों के भेद से नाना रूप स्थिति अनुभाग और प्रदेशों की अपेक्षा विभक्त चार प्रकार की सत्ता अवस्था को निरंतर धारण करता हुआ, सत्ता रूप अवस्था को यानी कर्म बंध करके उसका बंध उसकी सत्ता बनी रही थी, उन कर्मों के बंद संक्रम उदय उदीर्ण रूप परिणामों को निरंतर अपने रूप करता हुआ, कर्मों की अवस्थाओं को अपने रूप करता हुआ यानी अपने रूप मानता हुआ, क्रोधोपयोग मानोपयोग मायोपयोग और लोभोपयोग से कालोपयोग एवं वर्गणाओं द्वारा और भावोपयोग रूप वर्गणाओं द्वारा पुनः पुनः परिणमन करता हुआ कालोपयोग और भावोपयोग लिया। वर्गण यानी वो सिमिलैरिटी समानता, लता दारू अस्थि और शैल के समान कर्मों के अनुभाग स्थानों को, ये जो अनंत अलग अलग अनुभाग स्थान है उनको मंद मध्यम और उत्कृष्ट परिणामों के वश से निरंतर प्रवर्तता हुआ यानी अलग अलग अनुभागों रूप से वो प्रवर्तता रहा, नाना प्रकार के परिवर्तनों द्वारा अनंत बार परिभ्रमण करके, हमने ये पांच प्रकार के परिवर्तन देखे है, कौन से, द्रव्य परिवर्तन, क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन, भाव परिवर्तन और भाव परिवर्तन। तत्पश्चात यानी ये अनंत परिवर्तन अनंत बार परिभ्रमण करने के बाद भीतर योग्यता रूप से प्राप्त भव्यत्व शक्ति की सहायतावश किसी प्रकार कर्मबंधों के द्रव्यादि बाह्य चार प्रकार के कारणों की अपेक्षा शिथिलता तो को प्राप्त होने पर, द्रव्य क्षेत्र काल भाव बाह्य कारण है ना, द्रव्यादि चार प्रकार के कारण ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव हम देते ना, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा कुछ ये बाह्य में लिए, कारणों की अपेक्षा शिथिलता को प्राप्त होने पर संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्त आदि लक्षण वाली प्रायोग्य लब्धि को आत्मसात करता हुआ ये संगी पंचेन्द्रिय पर्याप्तपना प्राप्त होने वाला उसको लिया, विशिष्ट योग्यता मिली उसको, यह अलग अर्थ में लिया उसको।
पहले विशुद्धि लब्धि हो गया,
नहीं नहीं यहाँ प्रायोग्यता ही नहीं, उसकी खास योग्यता हुई उसकी। देशना लब्धि, शोषम लब्धि, विशुद्धि लब्धि और करण लब्धि को क्रम से प्राप्त करके उनके बल से दर्शन मुनि कर्म के उपशम के प्राप्त होने से निसर्गज और अधिगमज अन्यतर तत्वार श्रद्धान रूप शंकादि अतिचारों से रहित प्रशम संवेग आस्तिक्य की अभिव्यक्ति यानी ज्ञापक लक्षण वाले विशुद्ध सम्यक दर्शन परिणाम को उत्पन्न कर। ये सम्यक दर्शन को प्राप्त हुआ है तो उसमें पांच लब्धि पूर्वक प्राप्त हुआ और उसमें निसर्गज और अधिगमज दो प्रकार के भेद होते हैं और उसका दूसरा जो तत्वार श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन उसका वो स्वरूप बताया और वो कैसे होता है तो शंकादि अतिचारों से रहित है यानी शंका कांक्षा आदि उसमें कोई दोष नहीं है और उसके बाह्य जो लक्षण बताए गए हैं अभिव्यक्ति यानी बाहर प्रकट कौन कौन से होते हैं उसके प्रशम संवेग आस्तिक्य इसमें भी आठ प्रकार से भी बताते हैं चार प्रकार से भी बताते हैं तो विशुद्ध सम्यक दर्शन परिणाम को उत्पन्न कर। उसी के समान काल में विशुद्ध आत्मानुभूति रूप ज्ञान को प्राप्त कर यानी जिस समय वो सम्यक दर्शन प्राप्त किया है उसी काल में आत्मा की अनुभूति हुई इस प्रकार बोधि लाभ को प्राप्त करता हुआ इसको बोधि लाभ कहा। निक्षेप नए प्रमाण तथा निर्देश अस्तित्व संख्या आदि उपायों से ये प्रमाण नए अधिगम कहा था हा? और निर्देश स्वामित्व साधन वगैरह और यहाँ अस्तित्व संख्या ने सत संख्या वगैरह निर्देश स्वामित्व साधना अधिकरण वगैरह वो लिया सूत्र और सत्संख्या में अस्तित्व संख्या वगैरह आदि उपायों से जीवादि पदार्थों के प्र हुआ है जीवादि पदार्थों के जीवादि पदार्थों के स्वतत्व को विधिवत जानकर यानी जो सात तत्वों का स्वरूप अच्छी तरह से जानकर भोगोपभोग के साधन रूप चेतन और अचेतन पदार्थों की उत्पत्ति स्वभाव और प्रलय स्वभाव का ज्ञान होने से ये इंद्रियों के जो विषय है उसमें जो चेतन और अचेतन पदार्थ है उनके जो पर्याय उत्पन्न होती है विनाश होती है तो उसका ज्ञान होने से विरक्त व तृष्णा रहित होता हुआ यानी उन भोगों से विरक्त होता है उसकी कोई इच्छाएं कम हो जाती है मिट जाती है। तीन गुप्तियों से गुप्त हुआ यानी सुरक्षित हुआ ये कौन से तीन गुप्ति है हाँ मनोगुप्ति वचन गुप्ति काय गुप्तियों से गुप्त हुआ मुनियों की अपेक्षा वर्णन करते हैं पर पांच समितियों और दशलक्षण धर्म के अनुष्ठान से युक्त संसार और उनके कारणों से प्राप्त हुए चतुर्गति ब्रह्मण रूप फल के श्रद्धान को प्राप्त हुई विशुद्धि द्वारा बढ़ाता हुआ भाई गई आत्मानुप्रेक्षा रूप यानी आत्मानुप्रेक्षा का चिंतन करता है भाई यानी भाता है हाँ। ये तो इसमें यही वापरा है उन्होंने सर्वत्र आत्मानुप्रेक्षा रूप बारह भावनाओं के द्वारा विषयों की अभिलाषा से रहित पने को जिसने स्थिर कर लिया है यानी इंद्रिय विजय तो प्राप्त था ही था ये बारंबार भावना के द्वारा वो उसी में और दृढ़ता से बना रहा ऐसा समृद्ध आत्मा रूप होता हुआ निराश्रय होने से नए कर्मों के उपचय से रहित होता उपचय करना यानी संचय करना परिसहजय और बाह्याभ्यंतर में हुआ बाह्याभ्यंतर तप के अनुष्ठान से अंतरंग और बहिरंग तप से तप के अनुष्ठान के अनुभव से पूर्व में उपजित हुए कर्मों की निर्जरा करता ये पूरा ही शुरू से अनादि जो मिथ्या दृष्टि था वो इस तरह से आगे बढ़ रहा है, अब मुनि अवस्था का वर्णन चल रहा है, तो कहते पूर्व कर्मों की निर्जरा करता हुआ श्रेणी पर आरोहण करके करने के पूर्व ही दर्शन मोह की तीन और चार अनंतानुमति सात मोहनी कर्म संबंधी प्रकृतियों का क्षय करके संयम का अनुपालन और विशुद्धि स्थान विशेषों की उत्तरोत्तर प्राप्ति से आर्त्र ध्यान रौद्र ध्यान और अशुभ लेशा परिणामों को अत्यंत क्षीण करके सुविशुद्ध लेशारूप धर्म ध्यान परिणाम से समाधि को प्राप्त होकर उत्तम सहनन उत्तम चारित्र और उत्तम देह का धारी होता हुआ उपशम श्रेणी के योग्य परिणामों को क्रम से उल्लंघन कर मोक्ष की श्रेणी चाहिए श्रेणी रूप भेद रहित क्षपक श्रेणी पर आरोहण करता हुआ उसमें अपूर्व करण अनिवृत्ति करण और सूक्ष्म सांप्राय रूप क्षपक गुण स्थानों में प्रथम शुक्ल ध्यान रूप से प्रवर्तमान होता हुआ पूर्वोक्त क्रम से मोहनी कर्म का क्षय करके उसके बाद क्षीण कषाय भाव को प्राप्त कर वहां दूसरे शुक्ल ध्यान रूप अग्नि के द्वारा ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय कर्म की प्रकृतियों का पुनः वे उत्पन्न न हो जाए इसलिए पूर्वोक्त विधि से भस्मसात भाव को प्राप्त करके यानी उनको भस्मसात किया ने पूरा नाश कर दिया स्वयंभू रूप अपनी पर्याय परिणत होता हुआ यानी स्वयं ही उस रूप हुआ है उसको इसलिए स्वयंभू कहा समस्त गेय रूप से ज्ञान लक्ष्मी का अनुभव करके अपनी ज्ञान रूप लक्ष्मी है उसके पूरा विकास हो गया है तो समस्त गेय रूप से ज्ञान लक्ष्मी का अनुभव करके तत्पश्चात क्रम से असंख्यात गुणश्रेणी द्वारा कर्म प्रदेशों की निर्जरा करता हुआ बहुविजनों को हित का उपदेश देने के लिए विहार करके अंत में विहार का उपसंहार करता हुआ जब अंतर्मूर्त प्रमाण आयु शेष रहती है तब तीर्थंकर केवली या सामान्य केवली या समुद्रास से या अन्य प्रकार से चार अघाती कर्मों की स्थिति विशेष को समान करके तृतीय शुक्ल ध्यान के द्वारा इसका नाम क्या है सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपद विशुद्ध योग रूप होने से अंतर्मूर्त काल तक अयोगी केवली गुण स्थान में अलेश्यपने और शील के ईश्वरपने को प्राप्त कर उसके बाद शेष कर्मों का क्षय होने से भवबंधन से मुक्त होता हुआ पहले प्राप्त किए गए ईंधन को प्रतिपक्ष रहित वन्नी के समान जलाकर यानी जो ईंधन को अग्नि जला देती है बीच में कोई उसके कोई रुकावट नहीं है कोई प्रतिपक्ष नहीं है पूरे ईंधन को नष्ट कर देती है जला डालती है तो उसके समान वन्नी ने अग्नि जलाकर पहले प्राप्त हुए भव का वियोग होने से ये तो जो भव वर्तमान का था वो तो पहले प्राप्त किया था हेतु का अभाव होने से अभी नए भव की तो कोई वहां हेतु नहीं रहा और उत्तर भव की उत्पत्ति न होने से अनंत संसार संबंधी दुखों से मुक्त होता हुआ तथा अंतिम देह से किंचित न्यून जीव घन परिणाम वाला ये अंदर कोई पोला नहीं है घन परिणाम वाला तदाकार ही किंचित न्यून जीव घन परिणाम वाला तदाकार ही अमूर्ति रूप से लोक के शिखर को प्राप्त होता हुआ आत्यंतिक एकांतिक निरतिशय निरुपम अव्याबाध अचल और आमय रहित निरामय निर्वाण सुख को प्राप्त कर परम शांत दशा को प्राप्त होता हुआ निर्वाण को प्राप्त होता है यह पूरे शास्त्र का समुच्चय रूप अर्थ है पूरा उन्होंने
एक वाक्य है और क्या है हिंदी है
402 نمبر کا پوائنٹ پورا. اتنا گھما گھما اور ایک واقعے میں پورا بتا دیا. اتینتک اور آمے کا مطلب نہیں سمجھا.
اتینتک
یعنی پریپورن, ایکانتک یعنی ایکانت سے, آمے یعنی نرامے, کوئی وہاں روگ وغیرہ نہیں. آمے یعنی روگ. ज्ञापक है ना बताने वाला. ये समय दृष्टि के बाह्य चिन्ह बाह्य लक्षण हमने शास्त्रों में पढ़े थे. रत्नग्रहण शौकाचार में तो 8 बताए, वो वात्सल्य प्रभावना वगैरह भी उसमें ले लिए, मगर वो 4 में भी बताते हैं. हाँ तो आगे बढ़ेंगे अभी हम 187 से 190 तक. अभी यहाँ अलग अलग गाथाएं बताएंगे. ये वैसे तो संस्कृत श्लोक है. अनादि कर्म संबंध परतंत्रो विमूढ़ संसार चक्र मारूढ़ो ब्रह्म इत्यात्म सारथी. ब्रह्म वम ब्रह्म वो बहुत चाहिए. ब्रह्म अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाह रूप से चले आ रहे कर्मों के संबंध से परतंत्र हुआ यह अज्ञानी जीव सारथी बनकर संसार रूपी चक्र पर आरूढ़ हुआ घूमता रहता है. वो ब्रह्म ऐसा शब्द है वो. इति आत्मसारथी. सत्वंतर्बाह्य हेतुभ्याम भव्यात्मा लब्ध चेतन सम्यक दर्शन सद्रत्नम आदत्ते मुक्ति कारणम. किंतु जो भव्यात्मा है और जिसने आत्मा के अस्तित्व को प्राप्त कर लिया ने जाना है, पहचाना है, अनुभव किया है, वह अंतरंग और बहिरंग हेतुओं के द्वारा. ये निमित्त उपादान दोनों को यहाँ स्वीकार है. अंतर्बाह्य हेतुभ्यम मुक्ति के कारण रूप मुक्ति कारणम सम्यक दर्शन रूपी सच्चे रत्न को प्राप्त करता है. सम्यक दर्शन सद रत्नम आदत्ते. आगे 3 नंबर को. मिथ्या तो कर्दमापायात् प्रसन्नतर मानस ततो जीवादि तत्वानां याथात्म्यम अधिगच्छति. मिथ्यात्व रूपी कीचड़ से दूर होने से मिथ्यात्व कर्दम अपायात जिसका मानस अत्यंत प्रसन्न हुआ है. प्रसन्नतर मानस वह इस कारण ततः जीवादि पदार्थों के यथार्थपने को जानने में समर्थ होता. हम कहते ना मिथ्यात्व का वश होता हुआ ये सही विचार ही नहीं करता है. अधिगच्छति यानी जानने के लिए समर्थ होता है. अहम ममाश्रवो बंध संवरो निर्जराक्षय कर्मणामिति तत्वार्थस्तदा समवबुध्यते. मैं ज्ञान दर्शन रूपी चैतन्य मूर्ति आत्मा हूँ. मेरे कर्मों का आश्रव बंध संवर निजरा और कर्मों का पूरा क्षय रूप मोक्ष ये 7 तत्वार्थ भले प्रकार जानने में आते हैं. ये तो उसका मैं जानने वाला. हेयोपादेय तत्वज्ञो मुमुक्षु शुभ भावना संसारिकेषु भोगेषु विरज्जति मुहुर्मुहु. जिस मुमुक्षु ने हेय और उपादेय तत्व को जान लिया है तथा जो शुभ भावना वाला है वही सांसारिक भोगों से बार बार विरक्त होता है. मुहुर्मुहु एवं तत्व परिज्ञानात् विरक्तस्यात्मनो भृशं निरास्वरत्वता छिन्नायाम नवायाम कर्म संततौ। इस प्रकार तत्व के परिज्ञान व श्रेणी अच्छी तरह से पूरी तरह से जानने के कारण विरक्त हुए आत्मा के निराश्र हो जाने के कारण नई कर्म परंपरा छिन्न हो जाती है, अर्थात नई कर्म परंपरा का आश्रय रुक जाता है। हम देखते हैं ना, वो पहले में मिथ्यात्वादी का आश्रय रुकता है, यानी क्रम से वो बढ़ता चला जाता है। पूर्वार्जितं क्षपयतो यथोक्तै क्षय हेतुभिः संसार बीजं कास्येन मोहनीय प्रहीयते। तथा यथोक्त कर्मों के क्षय में हेतु रूप कारणों के द्वारा संसार का मूल कारण मोहनीय कर्म पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यथोक्त ने जो पहले बताए हैं, यथा उक्त ये कर्मों का क्षय जो पहले बताया है उस प्रकार से उसका क्षय हो जाते। ततो अंतराय ज्ञानघ्न दर्शन घ्नान्यनंतरम प्रहीयन्ते से युगपत त्रीणि कर्माण्य शेषतः। और उसके बाद ये तीन क्षय होते हैं। तदनंतर इस जीव के अंतराय कर्म, ज्ञानावरण कर्म, ज्ञानघ्न का दर्शनघ्न, दर्शनावरण कर्म, ये तीनों कर्म एक साथ पूरी तरह क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। गर्भ सूचा विनष्टायाम यथा बालो विनश्यति तथा कर्म क्षयम याति मोहनीय क्षयम गते। वो मोहनीय हुआ, मोहनीय कर्म। गर्भ सूची के विनष्ट हो जाने पर जैसे बालक मर जाता है, वैसे मोहनीय कर्म के क्षय हो जाने पर समस्त कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। ततो क्षीण चतुष्कर्मा प्राप्तोथाख्याथ संयमम बीज बंधन निर्मुक्त स्नातक परमेश्वर। उसके बाद जिसने चार घाती कर्मों का क्षय कर लिया है, और जो यथाख्यात करो यथा ओ के बदले यो करना, जो यथाख्यात संयम को प्राप्त हुआ है वह बीज बंधन से निर्मुक्त स्नातक एवं परमेश्वर हो जाता है, उसको स्नातक कहते हैं। शेष कर्म फलोपेक्ष शुद्धो बुद्धो निरामय सर्वज्ञ सर्वदर्शी च जिनो भवति केवली। तथा वह शेष कर्मों के फल की उपेक्षा सहित होता हुआ यानी अन्य भी कर्म है परंतु उसका कोई फल है ही नहीं, उसके भी शुद्ध बुद्ध निरामय, निरामय करते क्या है, निरोग रोग रहित। निरामय निर निर निरोग निरोग सर्वज्ञ और सर्वदर्शी केवली जिन होता है। 12 नंबर, कृष्ण कर्म क्षयादूर्ध्वं निर्वाणम अधिगच्छति यथा दग्धेन्धनो वन्यैर्निरुपादान संतति। उसके बाद यह जीव शेष कर्मों का क्षय होने जाने से निर्वाण को प्राप्त होता है, जैसे कि ईंधन से दग्ध हो जाने पर उपादान संतति से रहित अग्नि बुझ जाती है। क्या होता है, हमारा गैस सिलेंडर समाप्त हो गया है। तदनंतरम एवोर्ध्वम आलोकांतात् सच्छति पूर्व प्रयोगासंगत्वात् बंधच्छेदोर्ध्व गौरवै। तदनंतर ही लगाया, तदनंतरम एव वह जीव पूर्व प्रयोग असंगपना बंध छेद तथा ऊर्ध्व गौरव रूप धर्म के कारण लोक के अंत तक जाता है। ये ऊर्ध्व जो गमन है वो तदनंतर ही होता है, नहीं तो आजकल वो हाँ पूर्व प्रयोगात वगैरह आई ना, वो इसमें भी आता है द्रव्य संग्रह में, ये सब इसी आगे बता रहे हैं। हाँ वो अभी बता रहे कुलाल चक्रे दोलायामि शौचापि यथेष्यते पूर्व प्रयोगात कर्मेह तथा सिद्ध गति स्मृता। जिस प्रकार कुम्हार के चक्र में, हिंडोला में और बाण में, बाण में लिखा है वो बाण है ना, पूर्व प्रयोग आदि कारणवश क्रिया होती है, उसी प्रकार सिद्ध गति जाननी चाहिए। इन्हें अभी वो शुरू हुआ है प्रोसेस, वो आगे चल गया, सिद्ध हुआ, ऐसा होना चाहिए। मृल्लेप संग निर्मोक्षा यथा दृष्टा स्वलाभुन कर्म संग विनिर्मोक्षा तथा सिद्ध गति स्मृता। जिस प्रकार पानी में मिट्टी के लेप का संबंध छूट जाने से तुमड़ी की ऊर्ध्व गति देखी जाती है। तुम्बड़ी चाहिए, तुम्बड़ी मराठी तो हम तुम्बड़ी कहते हैं। यहाँ बो करो, बो तुम्बड़ी। ऊपर क्या लिखा है, मृत लेप संग निर्मोक्षाद यथा दृष्टा अपसु अलाबुना अलाबु। तुम्बड़ी समझते है, तुम्बड़ी नहीं समझते? बोपड़ा बोपड़ा ये जो सूख जाता है तो उसके अंदर मिट्टी भर देते हैं, वो अगर वो डूब जाता है मिट्टी के कारण पानी के नीचे, और भीगने से क्या होता है, मिट्टी मिट्टी निकल जाती है उसमें से, तो वो हल्का हो जाता है, ऊपर आ जाता है। वो सूखा भोपड़ा तो कहते, पानी में मिट्टी के लेप का संबंध छूट जाने से तुम्बड़ी की ऊर्ध्वगति देखी जाती है। उसी प्रकार कर्मों के बंधन के पूरी तरह से विच्छिन्न हो जाने के कारण सिद्धों की ऊर्ध्वगति जाननी चाहिए। ये उदाहरण इसमें भी दिए हैं सारे तत्वार सूत्र में, गृह संग्रह में। एरंड यंत्र फेलासु बंध छेदाद यथा गति कर्म बंधन विच्छेदाद सिद्धस्यापि तथेष्यते। एरंड की बोंडी के फूटने पर, वो बोंड होता है ना, बोंड समझते हैं, उसका फल जो होता है वो सूखने पर ऐसा खुल जाता है। बंधन के छिन्न होने से जिस प्रकार एरंड के बीज की ऊर्ध्व गति होती है, हल्का होता है तो ऊपर उठ जाता है, उसी प्रकार कर्मबंध का, बंधन का विच्छेद होने से सिद्धों की भी ऊर्ध्वगति स्वीकार की गई है। अयोगी का अंत समय अयोगी है, सिद्ध के पहले समय में,
सिद्ध के पहले समय
एक ही समय है, ऊपर सिद्ध पद प्राप्त करने का और ऊपर जाने का। 17 नंबर ऊर्ध्व गौरव धर्माण जीवा इति जिनोत्तमै अधो गौरव धर्माण कुद्गला इति चोदितम्। जिन देव ने जीवों को ऊर्ध्व गौरव धर्म वाला और कुद्गलों को पुगदल हुआ है अधो गौरव धर्म वाला कहा। ये गौरव नहीं, गौरव यानी ऊर्ध्वगामी, और पुद्गल कैसे अधोगामी। वो गो पहले आया है, फाद में द आया है, वो द के नीचे ग चाहिए या द और ग चाहिए अलग अलग। अठारह नंबर पुद्गल होते हैं वो नीचे जाते हैं, आत्मा है वो ऊर्ध्वगमन वाला है। यथा धस्तिर्य ऊर्ध्वं च लोष्ठवाग्नि वीचय स्वभावतः प्रवर्तन्ते तथोद्वगतिरात्मनाम। जिस प्रकार ढेला, वायु और अग्नि ज्वाला की क्रम से नीचे की ओर, तिरछी और ऊपर की ओर स्वभावतः गति होती है। ढेला समझते हैं, वे पत्थर हो गए जो कुछ हो, कोई मिट्टी का ढेला, अच्छा इन्हें कोई स्कंद बड़ा, वो तो नीचे की ओर जाता है, वायु आड़ा और अग्नि ऊपर, इसमें पानी भी कहते हैं, पानी का स्वभाव नीचे की ओर जाना, हाँ ढेला में पानी मिट्टी, उसी प्रकार आत्माओं की मुक्त होने पर स्वभावतः ऊर्ध्वगति होती है। अतस्तु गति वैकृत्यं तेषां यदुपलभ्यते कर्मणा प्रतिघाता च प्रयोगा च तदिश्यते। इसलिए उन वस्तुओं में जो गति की विकृति उपलब्ध होती है वह कर्मों के कारण प्रतिघातवश या प्रयोगवश कही जाती है। यानी आत्मा की स्वभावतः गति कैसी ऊर्ध्व गति है, परंतु यहाँ हम कहीं पर भी यहाँ वहाँ जाते हैं, घूमते हैं और प्रभाव में भी जाते हैं, वो किस कारण होते हैं, कर्मों के कारण होते हैं, प्रतिघात के कारण होते हैं या प्रयोगवश होता है।
होने पर
ने आजकल बहुत प्ररूपणा चल रही है, वो विग्रह गति में पहले ऊर्ध्वगमन करता है बाद में नीचे आता है, ये तो बिल्कुल गलत है, अभी उसकी चर्चा छोड़ेंगे हम। 20 नंबर, अधस्तिर्य अथ ऊर्ध्वं च जीवानां कर्म जागति ऊर्ध्वमेव स्वभावेन भवति क्षीण कर्मणां। कर्मों के विपाक के कारण जीवों की नीचे की ओर तिरछी और ऊपर की ओर अनियम से गति होती है, किंतु जिनका कर्म क्षीण हो गया है ऐसे जीवों की गति स्वभाव से ही ऊपर की ओर होती है। ये ऊर्ध्व गति क्यों है, उसमें कितनी यहाँ चर्चा हुई देखो, और वो स्वभाव तभी प्रकट होगा जब ही कर्मों का पूरा क्षय हो जाएगा। उत्पत्तिश्च विनाशश्च प्रकाश तमसोरिह युगपद भवतो यद्वत् तथा निर्वाण कर्मणो। जिस प्रकार इस लोक में प्रकाश की उत्पत्ति और अंधकार का विनाश एक साथ होते हैं, उसी प्रकार जीव का निर्वाण और कर्मों का विनाश एक साथ होते हैं, है ना, उसी समय वो सिद्ध होता है। दग्धे बीजे यथात्यन्तं प्रादुर्भवति नांकुर कर्म बीजे तथा दग्धे नरोहति भवांकुर। जिस प्रकार बीज के दग्ध हो जाने पर उससे अंकुर सर्वथा उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार कर्म रूपी बीज के जल जाने पर बहुरूपी अंकुर की उत्पत्ति नहीं होती। ये तो आसान है ना समझने पर, कोई करेक्शन है? 193 मनोज्ञाम, मनोज्ञा तन्वी मनोज्ञा, मनोज्ञा ज्ञा के ऊपर बिंदी हो नहीं चाहिए, मनोज्ञाम लिखा है ना, मनोज्ञा चाहिए। तत्सदृशो सदृशो हुआ है, सदृशो चाहिए। कितने नंबर पर है? सदृशो सदृशो आगे देखते हैं।
सदृशो
सदृशो तन्वी मनोज्ञा सुरभि पुण्या परम भास्वरा प्राग्भारानाम अवसुधा लोकमूर्ध्नि व्यवस्थिता। लोक के अग्रभाग में लोकमूर्ध्नि जो पृथ्वी अवस्थित है, वसुधा व्यवस्थिता, वह छोटी है, तन्वी का क्या मनोज्ञ है, सुगंधित है, सुरभि पुण्य ने पवित्र है और अत्यंत देदीप्यमान है। परम भास्वरा उसका नाम प्रागभार है। ईशत, ईशत के वो थिन है ना, छोटी है। कितनी कितनी मोटी है? ना ना, वो सिद्धशिला को आप बीच में आठ जन गए। पृथ्वी पूरी ईशत प्रागभार पृथ्वी जो एक राजू भाई सात राजू है वो पूरी की पूरी आठ योजन थिकनेस वाली है। उसके सेंटर में सिद्धशिला, वो सिद्धशिला टेपरिंग है, पृथ्वी टेपरिंग नहीं है। पृथ्वी तो पृथ्वी है, जैसे ऐसे पूरी आड़ी की आड़ी, जैसे ये बॉक्स है पूरा आड़ा है, ये जो कोई है इसके थिकनेस है नहीं, पूरी आठ योजन की पृथ्वी, ऐसा एक राजू और ऐसा सात राजू लोक के टॉप पर।
तो उसके
उसके सेंटर में जो त्रस नाली एक राजू भाई एक राजू की, और उसमें जहाँ हमारे ढाई द्वीप है वैसे अत्यंत सेंटर में वो 45 लाख योजन वाली सिद्धशिला, वो सेंटर में कितने आठ योजन, और ऐसी हाँ पेपर थी साइड में, परंतु वो कितना जाके आठ योजन ऐसी है और 45 लाख योजन, यानी वो कर्वेचर नहीं का बराबर होगा। बिल्कुल हम चांद जैसी निकालते हैं वो तो कहने के लिए कर्वेचर है उसका, परंतु देखो
अभी ये आठ योजन की चौड़ाई बताई।
हाँ मोटी, हाँ
जैसे पहले पृथ्वी की बता तो उसका 100,000 1,00,000
वो तो 1,80,000 योजन है ना पहली पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, और नीचे नीचे की पृथ्वियां वो थिन होती चली जाती है। हाँ एक एक राज्यों के डिस्टेंस पर है उसकी थिकनेस, वो 32,000 24,000 16,000 ऐसे नीचे नीचे घटती चली जाती है। अब यहाँ आगे बढ़ेंगे कि लोक के अग्रभाग में जो पृथ्वी अवस्थित है वह छोटी है। पृथ्वी किसको कहना? जो लोक के एक एंड से दूसरे एंड तक केवल वात वाले को छोड़कर इतनी पूरी फैली है उसको पृथ्वी कहना। हर एक पृथ्वी के नीचे 20,000 योजन के वात वाले, तीन तीन वात वाले हर एक पृथ्वी के नीचे, अन्य सातों पृथ्वी के ऊपर कोई वात वाले नहीं है, मात्र ईशत प्रागभार के ऊपर भी वात वाले, वो दो कोस एक कोस और 1575 धनुष वाले। तो इसका नाम है प्रागभार, और वो छोटी है ना, लिखा ना छोटी है, इसलिए उसका नाम ईशत। छोटी है ना, ऐसे छोटी नहीं समझना, थिन है। नहीं, सिद्धशिले का नाम सिद्धशिला और पूरी पृथ्वी का नाम प्रागभार।
पूरी पृथ्वी का?
हाँ पूरी आठवीं पृथ्वी,
यानी
एक राजू बाय सात राजू फैली हुई है वो, सभी पृथ्वियां इसी है ना, लोकाकाश के एच टू एच फैली हुई है। अभी 24 नंबर, नूलोक तुल्य विष्कम्भा सित छत्र निभा शुभा ऊर्ध्वं तस्याक्षिते सिद्धा लोकान्ते समवस्थिता। मनुष्य लोक के समान विस्तार वाली, यानी कितनी? 45 लाख योजन विस्तार वाली, यानी उसका डायमीटर है 45 लाख योजन का डायमीटर वाली गोल है, गोलाकार सफेद छत्र के समान और शुभ है। हाँ उल्टा दिखाते हैं क्योंकि वो उत्तान कहा है उसको। आजकल ये नया फैशन निकाले, बहुत लोग कहते उल्टा है उल्टा है उल्टा नहीं, ऐसा है ऐसा नहीं है। उत्तान यानी ऐसा, हम किसी को कहें वो उत्तान सोया है तो कैसा सोया? ऊपर मुंह करके। उत्तान का अर्थ क्या होता है? ऊपर मुंह करके। भले वो छत्र के समान है परंतु उसको ऐसा कटोरा ऐसा रखेंगे ना हम,
उल्टा छत्र में।
और ऐसा भी कि ऊपर समान है और नीचे हीना दिखे, ऐसा कहाँ है? त्रिलोकसार की गाथा, यहाँ त्रिलोकसार पड़ा होगा, उसकी गाथा में मैं निकाल के बताऊंगी। क्योंकि ये चर्चा जब हमने भूगोल का शिविर लिया था तब किसी ने प्रश्न भी पूछे थे, कोई अभ्यास भी आते ना कि आजकल तो ये ऐसा था इस पुस्तक में ऐसा था कि सिद्धशिला आज तक ऐसे चंद्राकार वो अभी उल्टी है ऐसा सब कहते हैं। ऐसा नहीं है, मूल दो बार ये गाथाएं आई है त्रिलोकसार में, और दोनों में वो स्पष्ट रूप से लिखा है ऊपर से वो समान है समतल है और नीचे ही ना दिखे, यानी वो कर्वेचर है वो नीचे की ओर है। तथा उस पृथ्वी के ऊपर लोक के अग्रभाग में सिद्ध भगवान विराजमान है, पृथ्वी को टच करते हुए नहीं है,
उसका टेक्निकल रीजन समझ में आ गया मुझे क्यों ऊपर है, क्योंकि सभी शुक्र भगवान शिव से एक साथ में लाइन पर है, अगर वो उल्टा होगा तो इसको नीचे हो गया, आधे रात थोड़े नीचे उठाएंगे।
ना ना ना, पर सिद्ध शिला में कोई टच ही नहीं करता है, सिद्ध शिला के तनुवात वलय में है तो यहाँ तो कोई है ही नहीं है। सिद्ध शिला के उस आकार का और सिद्धों का कोई संबंध नहीं है। 24 अभी 25 तादात्म्यादुपयुक्तास्ते केवल ज्ञान दर्शने सम्यक् सिद्धतावस्था हेतु भावाच निष्क्रिया। तादात्म्य संबंध होने के कारण वे सिद्ध परमेष्ठी केवल ज्ञान और केवल दर्शन से सदा युक्त रहते हैं। तादात्म्य संबंध बताए ना, परंतु हमेशा ही केवल ज्ञान केवल ज्ञान केवल ज्ञान है, क्योंकि वो जो ज्ञान गुण है वो परिपूर्ण अवस्था रूप से प्रकट हुआ है और वैसा ही रहने, इसलिए तादात्म्य कह दिया। तो सदा उपयुक्त रहते हैं, ये उपयोग रूप रहता है तथा सम्यक्त्व और सिद्ध अवस्था को प्राप्त है। इसके साथ वे हेतु का अभाव होने से परिस्पंद रूप क्रिया से रहित अर्थात निष्क्रिय है। ये कौन से हेतु का अभाव है? कौन सा कर्म बोलो? शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, अभी कोई कर्म ही नहीं है, हेतु का अभाव है ना। पहले परिस्पंदन रूप क्रिया होती थी, क्योंकि पुराने नाम कर्मों का शरीर नाम कर्मों का उदय भी होता था और नए ग्रहण करने रूप वहाँ कार्य भी चलता था। योग ही परिस्पंदन रूप क्रिया नहीं, योग उसी को निष्क्रिय कहा। आगे 26 नंबर। तथोप्युर्ध्वगति स्तेषां कस्मान्नास्ति इति चेन्मति धर्मास्तिकायस्य अभावात् सहिगे दुर्गते पर। लोक के अग्रभाग के ऊपर उन सिद्ध भगवंतों की गति किस कारण से नहीं होती, ऐसी यदि आपकी पृच्छा है तो उसका धर्मास्तिकाय का अभाव कारण है, क्योंकि गति का वह निमित्त कारण है। यह निमित्त की अपेक्षा से कथन आता है, तत्वार सूत्र में भी ऐसा एक कथन आता है, परंतु ऐसा नहीं समझना, देखो वो है इसलिए वो जा रहे, ऐसा नहीं, निमित्त रूप से बताया। संसार विषय अतीतम सिद्धानाम अव्ययम सुखम अव्याबादमिति प्रोक्तम परमम परम शीर्ष भी। सिद्धों का सुख संसार संबंधी विषयों से रहित अविनाशी अव्याबाद और सर्वोत्कृष्ट होता है, ऐसा परम ऋषियों ने कहा है। हम तो बोलते वहां मोक्ष में कुछ खाना पाना नहीं है और कुछ करना नहीं है तो क्या फायदा, यहाँ तो करने में मजा आती है ना। जीवों को तो ये राग द्वेष नहीं होगे तो भी मजा नहीं है सकता। 28 नंबर। स्यादेतत् शरीरस्य जन्तोर्नष्टाश्च कर्मण कथं भवति मुक्तस्य सुखमित्यत्र मे श्रुणु। कोई पृच्छा करे कि शरीर रहित और 8 कर्मों का नाश करने वाले मुक्त जीव के सुख कैसे हो सकता है, तो इस पृच्छा का उत्तर सुनो। हम तो शरीर में ही सब सुख मानना है, शरीर के द्वारा सुख का उपभोग करते, तो कहते वो कैसे रहते होगे, कैसे सुखी होगे, ना उनके अगर 8 कर्म है ना शरीर है। 194 पर आ गए। लोके चतुष्विहार्थेषु सुख शब्द प्रयुज्यते विषये वेदना भावे विपाके मोक्षे वच। बहुत अच्छा, समझ में आई क्या बात? देखो नीचे, इस लोक में 4 अर्थों में सुख शब्द प्रयुक्त होता है। एक इष्ट विषय की प्राप्ति में, विषय जो चाहते हैं वो विषय वो इंद्रिय भोग मिल जाए तो सुख। वेदना भावे, दूसरा वेदना के अभाव में, पहले बहुत तीव्र वेदना थी भले वो भूख की हो या कोई कुछ की, होगी या रोग की हो, अभी वो मिट गई तो सुखी हो गए। विपाके, तीसरा साता वेदनी आदि कर्मों के विपाक में, यानी पुण्य प्रकृतियों का फल मिल रहा है तो कर्मों के विपाक में। और मोक्ष एवच, चौथा मोक्ष की प्राप्ति में। सुखो वन्नी सुखो मायुर्विषये स्वहि अकथ्यते, दुःखाभावे च पुरुषः सुखितोऽस्मि इति भाषते। अग्नि सुखरूप है, वायु सुखरूप है, यह इष्ट विषयों की प्राप्ति में सुख कहा जाता है। यानी जो विषयों का जो सुख है वो कैसा है, अग्नि में सुख है, वायु में सुख है, सामान्य जैसे है, ऐसे ही कहना चाहते हैं ना। हाँ, दुख के अभाव होने पर पुरुष कहता है कि मैं सुखी हूँ। यहाँ वेदना के अभाव में सुख शब्द का प्रयोग हुआ है। दुखा भावे च पुरुष सुखी तो अस्मि इति भाषिते। ऊपर विषयेषु यह कथ्यते, सुखो वन्नी सुखो वायु विषयेषु यह कथ्यते, यानी विषयों के सुख में कैसा है, अग्नि सुखरूप है, वायु सुखरूप है, ठंडी के दिनों में वो अग्नि सुखरूप लगता है। अभी ठंड लगी ना तो रात को वो तो जलाते हैं और वह अच्छी लगती है ना, और गर्मी में वायु भी सुखरूप लगता है, तो ये इष्ट विषयों की प्राप्ति में सुख कहा जाता है। और दूसरी लाइन में दुखा भावे च पुरुषा, हाँ, दुख के अभाव होने पर कहता है वो मैं सुखी हूँ। आगे बताते 31 नंबर, पुण्य कर्म विपाका च सुखम इष्टेन्द्रियार्थजम, कर्म क्लेश विमोक्षा च मोक्षे सुखम अनुत्तमम। पुण्य कर्म के उदय से इंद्रियां और इष्ट पदार्थों की अनुकूलता से सुख उत्पन्न होता है। यहाँ विपाक अर्थ में सुख शब्द का प्रयोग हुआ है, विपाक यानी कर्मों का उदय, तथा कर्म क्लेश के अभाव से, कर्म क्लेश विमोक्षाच्च, मोक्ष में सर्वोत्कृष्ट सुख होता है, यहाँ मोक्ष में सुख शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे, सुषुप्त्यवस्थया तुल्यां केचिदिच्छन्ति निर्वृतिं, तदयुक्तं क्रियावत्वात् सुखातिशयतस्ततः। कितने ही पुरुष मानते हैं कि निर्वाण सुषुप्त अवस्था के समान है। सुषुप्त समझते, सो जाना, निद्रा, सोया हुआ, किंतु उनका वैसा मानना अयुक्त है, यानी योग्य नहीं है। यानी हम तो सोने में सुख मानते हैं ना, तो वहां तो मोक्ष में भी वो सो जाने जैसा मानते हैं, क्योंकि सांसारिक सुख की प्राप्ति में क्रिया देखी जाती है, क्या कहते हैं, जबकि मोक्ष सुख निष्क्रिय आत्मा का धर्म है। क्या बात है, यहाँ कुछ करने से सुख मिलता है ना, और वहां तो निष्क्रिय आत्मा है और वो तो अनंत सुखी है। सांसारिक सुख के प्राप्त होने के बाद पश्चाताप एवं आकुलता, पश्चाताप मैंने उसके बाद दुख देखा था, देखी जाती है, जबकि मोक्ष सुख आकुलता से रहित है। यानी वो सुख कैसे कहते हैं, जिसके पीछे दुख भरा ऐसा आता है ना, ये पश्चात दुख भरा उसको पश्चाताप कहा, बाद में ताप आता है। श्रम क्लमम मद व्याधि मदनेभ्यश्च संभवात्, मोहापत्तेर्विपाकाच्च दर्शनघ्नस्य कर्मण। सुषुप्त अवस्था की उत्पत्ति, यानी नींद क्यों आती वो बता रहे हैं। श्रम ने अत्यंत मेहनत की, खेद यानी जो हम कहने थक जाना उसको कहते खेद। नहीं, कल बात आई थी ना, खेद बलाधान मिलता है, अनंत वीर्य है तो खेद नहीं होता, उपयोग से खेद नहीं होता, ये शब्द आया था। दुख अलग बात है और खेद अलग बात है। खेद में वो मराठी में कहते हैं ना दमने, थक जाना, यानी नींद क्यों आती है? दुख से नहीं, थक जाने से आती है। हाँ, तो श्रम ही नहीं, कोई मेहनत का काम किया है, थक जाने से, नशा से, व्याधि यानी रोग होने पर भी हो जाता है। हम कहते कभी तो ग्लानी आती है, कहते नींद आती है, और काम के अधीन होने से, अधीन अधीन दोनों शब्द आते हैं, हम यूजुअली अधीन शब्द यूज करते हैं, अधीन भी बराबर है, और इनके संभव होने से होती है, इनके होने से, तथा उसमें दर्शनावरण निद्रादि कर्मों के विपाक से मोह की उत्पत्ति होती रहती है। इसको क्या कहा? मोह कहा। लोके तत्सदृश्यो ह्यर्थ कृष्णे प्यन्यथो न विद्यते उपमीयेत तद्येन तस्मान् निरुपमं स्मृतम्। समस्त लोक में मोक्ष सुख के समान अन्य कोई भी पदार्थ नहीं पाया जाता जिसके साथ उस मोक्ष सुख की उपमा दी जाए, इसलिए वह निरुपम यानी उपमा रहित सुख है, यानी किसी पदार्थ के किसी सुख के साथ हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। प्रत्यक्षम तद भगवताम अर्हताम तैश्च भाषितम गृह्यते स्थित्यतः प्राज्ञय न चद्मस्त परीक्षया। वह मोक्ष सुख अरिहंत भगवंतों के प्रत्यक्ष है तथा उनके द्वारा उस सुख का कथन हुआ है, इसलिए विद्वत जनों के द्वारा वह है इस प्रकार स्वीकार किया जाता है, किंतु छद्मस्थों की परीक्षा के द्वारा वह स्वीकार नहीं किया जाता। ये सभी तत्वों के बारे में ऐसा ही है। हम तो इतने सियाने समझते हैं, हम प्रूव करेंगे तो ही मानेंगे। इस प्रकार इतने प्रबंध के द्वारा निर्वाण फल की प्राप्ति तक चूलिका सहित क्षपणा विधि को समाप्त कर तदनंतर पश्चिम स्कंद के समाप्त होने पर क्षपणा नाम का अधिकार समाप्त होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए उपसंहार परक सूत्र को कहते हैं। खवण दंडो समत्तो, इस प्रकार क्षपणा दंडक समाप्त हुआ इति। हमारा भी इस प्रकार ये 16वां भाग जयधोला का समाप्त होता है, तो ये लेक्चर नंबर कौन सा 16 नंबर का था, और कल से हम महाबंध को शुरुआत करेंगे। ये हमारा सौभाग्य है ना, 2003 में हमने नवंबर में ही धवला शुरू की, 2003 में 22 नवंबर 2003, आज है 12 नवंबर 2000, 12 दिसंबर, हाँ दिसंबर 8 नहीं 7 हुए ना,
10 हो गए,
नहीं नहीं 3 से 4 में एक साल हुआ, 5 में इस तरह से, तो कितने 7 साल हो गए, तो धवला के 16 भाग और जयधवला के 16 भाग हो गए। बहुत अच्छी बात, कल से महाबंध शुरू करेंगे। बोलो 2400 भगवान की जावानी के ज्ञान ते सूझे नो कालो सो